ओम शांति। जीवन में किसी भी क्षेत्र में अगर हम मन चाही सफलता चाहते हैं तो हमारे पास विशेष दो बातों का होना बहुत जरूरी है। पहली बात है तन और मन में खुशी उमंग और उत्साह भरपूर होना, और दूसरी बात है जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य के प्रति संपूर्ण रीति से समर्पण होकर उस पर पूर्णतया एकाग्र होना। बहुत जरूरी है। उमंग उत्साह के साथ एकाग्रता जब होती है तो सफलता हमारी निश्चित होती है। तो ब्राह्मण जीवन में सबसे पहला वरदान हमें जो मिलता है वो है योगी भाव का। जितने भी वरदान संगम युग में हमें प्राप्त होते हैं उन सभी वरदानों से श्रेष्ठ वरदान है योगी भाव का। बच्चे हम सभी हैं बाबा के, हम सभी को वर्षा मिलता है, लेकिन जो योगी बच्चे होते हैं वो भगवान से संपूर्ण अधिकार प्राप्त करते हैं। क्योंकि योगी बच्चे परमात्मा का दिल जीत लेते हैं। जो संगम युग में भगवान का दिल जीत लेते हैं भगवान सारे कल्प के लिए ऐसी आत्माओं को मदद करने के लिए बंध जाते हैं। इसलिए बाबा का बच्चा बनने के बाद मुझे योगी भव का वरदान प्राप्त करना ही है, ऐसी दृढ़ता हमारे पास होना जरूरी है। क्योंकि बाबा कहते हैं दृढ़ता की परछाई है सफलता। तो योगाभ्यास में मन बुद्धि के बारे में हमारे पास विस्तृत जानकारी होना बहुत जरूरी है। सरल स्वरूप इन दोनों शक्तियों को हम बाबा पर एकाग्र कर सकते हैं और आध्यात्मिक जीवन में विशेष सिद्धियां या उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। उसके संबंधित पांच बातें हैं। इन पांच बातों को अगर आप अच्छी तरह से समझते हैं और प्रैक्टिकल में लाते हैं तो ये गारंटी है आपका योगाभ्यास दिन प्रतिदिन आगे ही आगे बढ़ता जाएगा, एकाग्रता की शक्ति भी बढ़ती जाएगी। पहली बात है योगाभ्यास में मन मनाभव का मंत्र का अजापा जाप करने के लिए मन हमारा सदा शांत और शीतल और हल्का हो, शांत शीतल और हल्का, ऐसा मन लंबे समय तक मन मनाभव का मंत्र का जाप करने की क्षमता रखता है। थोड़ा भी मन अशांत है या शीतलता की कमी है या थोड़ा बोझ है तो मन पावा से दूर हट जाता है। बुद्धि हमारी एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो। जब बुद्धि एक्टिव अलर्ट और फ्रेश होती है तो बुद्धि की जो कार्य क्षमता है वर्क एफिशिएंसी है वो बहुत हाई होती है। ऐसी बुद्धि लंबे समय तक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ाने के लिए सक्षम होती है, अथक होकर कार्यरत रहती है। लेकिन बुद्धि को इस पोजीशन में रखना, सदा एक्टिव और अलर्ट और फ्रेश रखना, ये हमारा काम है। कभी भी बुद्धि सुस्त न हो, कभी भी बुद्धि हमारी शिथिल न हो और कभी भी फ्रेशनेस बुद्धि का कम न हो। क्योंकि इस योग का दूसरा नाम है बुद्धि योग। इस योगाभ्यास में बुद्धि अहम भूमिका निभाती है। विशेष रोल बुद्धि का इसमें होता है। दूसरी बात, जब स्वयं को हम आत्मा समझते हैं, आत्मा ये शक्तियों का पुंज है, मास ऑफ एनर्जी है, तो आत्मा समझने के बाद कौन सी शक्ति मन है, कौन सी शक्ति बुद्धि है, ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होना जरूरी है। इसमें अगर कन्फ्यूजन है तो आपको एकाग्रता में सफलता नहीं मिलेगी। मन बुद्धि संस्कार ये आत्मा की तीन फैकल्टीज हैं, हम बोल तो देते हैं समझाते भी हैं, लेकिन ये आखिर भी तीनों शक्तियां कौन सी हैं, ये बात जानना जरूरी है। अगर आपको पूछते हैं कि डायमंड हॉल आपने देखा है, डायमंड हॉल का वर्णन, डायमंड हॉल की प्रेज हम जहां तहां सुनते हैं, एशिया में ऐसा हॉल किधर भी नहीं है, तो क्या आपने डायमंड हॉल देखा है? तो आपके सामने उसका पिक्चर आएगा कि ऐसा ये अद्भुत डायमंड हॉल शांतिवन में स्थित है। अभी भी आप उसको देख सकते हैं, वो पिक्चर आपके सामने मर्ज होता है, इमर्ज हो जाता है, तो आत्मा की जो देखने वाली शक्ति है उस डायमंड हॉल के पिक्चर को स्पष्ट देख रही है। फिर दूसरा, अगर कोई प्रश्न पूछता है वो कैसा हॉल है, आपने देखा है तो कैसा है, बहुत दिव्य और भव्य है, बहुत उसकी स्टेज लंबी है और ऊपर जो है ट्रांसलेशन के लिए बूथ बने हैं और आयरन वर्क बहुत बड़ा है, बड़ी बड़ी जो है कैंचियां लगी हैं और उसकी कैपेसिटी 25,000 है। आप एक एक बात सोच सोच के बता रहे थे, वो आपका मन है, सोचने वाली शक्ति मन है, देखने वाली शक्ति बुद्धि है। ये थोड़ा सा अंतर आपको एकांत में बैठकर अच्छी तरह से अनुभव करना जरूरी है। ये जब तक अनुभव क्लियर नहीं होता है तब तक आपको एकाग्रता में सफलता नहीं मिल सकती है। तीसरी बात, इन दोनों शक्तियों का आपस में बहुत गहरा संबंध है। कहते हैं मन जीते जगत जीत, मन को जीतने वाला जगत जीत बनता है। आज तक कोई मन को जीत नहीं सका, इसलिए जगत जीत नहीं बन सका। लेकिन ये बाबा ने हमें मन को जीतने के लिए बहुत अच्छा सरल तरीका बता दिया है। मन आपका है, मन आपके कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है, उसकी बहुत सरल युक्ति बाबा ने हमें बता दी है। तो बुद्धि मन को कंट्रोल करती है, बुद्धि मन को मैनेज करती है, मैनेजर है। बुद्धि मन को इंडिकेट करती है, इंडिकेटर उसका है। बुद्धि मन को डायरेक्ट करती है, डायरेक्टर उसका है। बुद्धि मन को प्लान देती है, प्लानर उसका है। तो बुद्धि ही होल एंड सोल पापा पावर है, मन केवल उसका फॉलोअर है, मन केवल उसके पीछे पीछे भागता है। लेकिन आत्मा और बुद्धि कमजोर होने के कारण द्वापर युग से मन अपने पीछे बुद्धि को भी घिसटता था और आत्मा को भी घिसटता था, भटकाता था। लेकिन आत्मा ने स्वयं को जब जाना, स्वयं अपने अथॉरिटी में स्थित होना जब समझा, तब मन को वो अपने काबू में लेने में सफल होता गया। तो मन को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि को हमें कंट्रोल में लेना है, बुद्धि को यथार्थ स्थान पर एकाग्र करना है। तो एकाग्र होता है तो बुद्धि हमारे कंट्रोल में रहती है, जब बुद्धि कंट्रोल में रहती है तो मन ऑटोमेटिक उसके पीछे अपने काबू में आ जाता है, इधर उधर कहीं जा नहीं सकता है, जाना चाहे तो भी नहीं जा सकता है। लेकिन आवश्यकता है इन दोनों शक्तियों को ट्रेनिंग देने की। कैसे ट्रेनिंग देंगे? जब भी हम योग में बैठते हैं, आत्मा समझकर बुद्धि रूपी नेत्र से बाबा के सुंदर छवि को देखते रहें, बस केवल देखते रहे, देखना माना कनेक्शन जुट जाना। और जितना लंबा समय तक हम देखते रहेंगे उतनी देखने की जो गहराई है, विजुअलाइजेशन पावर जो है उसकी गहराई बढ़ती जाएगी धीरे धीरे धीरे। किसी चीज को आप लंबे समय तक देखते हैं तो उसमें आप खो जाते हैं, 10 से 20, 30, 40, 50, 100% उसमें डूब गए, उसको कहेंगे बहुत गहराई से हम उसको देख रहे हैं। परसेंटेज ऑफ विजुअलाइजेशन को बढ़ाते जाना है। परम धाम में या सूक्ष्म अवतन में जाना है और बुद्धि को वहां फोकस करना है। जितना बुद्धि को वहां बाबा के पास हम रखते हैं तो बाबा की शक्तियों का बहुत गहरा इम्पैक्ट, बहुत गहरा प्रभाव उस बुद्धि पर और मन पर होता है। उसके बाद आत्मा में परिवर्तन स्वतः ही आने लगता है। बुद्धि उस शक्तियों के सागर में, बुद्धि उसके प्यार के सागर में बहुत गहराई से डूब जाती है, बहुत गहराई से, जैसे हम स्विमिंग उसमें करते हैं। ऊपर ऊपर अगर बुद्धि हमारे बाबा को देखती है तो लहरों में लहराने का आनंद आपको जरूर मिलेगा, लेकिन उसमें खो जाते हैं, डूब जाते हैं, समा जाते हैं तो बाबा से कुछ विशेष प्राप्तियां आपको उस सागर से हो सकती हैं। संपूर्ण योग की परिभाषा है फुल कॉन्शियसनेस और फुल टाइम। हमारा पूरा कॉन्शियस बाबा के पास ट्रांसफर करना है और निरंतर पूरा टाइम करना है, यह है संपूर्णता की निशानी, कर्मात्म स्थिति की निशानी, ये है हमारी मंजिल। उसके तरफ हम याद की यात्रा में तत्पर हैं, उस यात्रा में चल ही रहे हैं, लेकिन वो यात्रा का लक्ष्य वो है। कितने हम समीप पहुंच रहे हैं ये हमें चेक करते रहना है बार बार। लेकिन ये अभ्यास जब हम करते हैं, बुद्धि हमारी वहां थोड़ा समय टिकती है, लेकिन इस इंटरेस्ट और डिस इंटरेस्ट की ये बातें हैं। कितना बाबा में हमारा इंटरेस्ट है और कितना दुनिया में इंटरेस्ट है, ये बुद्धि को हलचल में लाने का काम करती है। इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया से जितना वैराग होगा उतना परमात्मा से अनुराग बढ़ता जाता है, लेकिन दुनिया से अगर हमारा वैराग नहीं होगा तो थोड़ा समय तक बुद्धि बाबा पर एकाग्र होगी और उसके बाद वहां से दुनिया की बातों की तरफ डाइवर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें यहां से बुद्धि को हटाना है, फिर वहां जुटाना है। एक तरफ से हटती है तो दूसरे तरफ सहज जुट जाती है, जिसको बाबा कहते छोड़े तो छुटो। तो डिसइंटरेस्ट, अनलिमिटेड डिसइंटरेस्ट, बेहद का वैराग्य हो। केवल कहने मात्र तक ना हो लेकिन उसकी फीलिंग आत्मा में अंदर से आवे कि ये दुनिया नीरस असार संसार है, कोई रस इसमें नहीं है। 5,000 वर्षों तक हमने इस दुनिया को यूज किया है, यहाँ के साधनों को, तत्वों को, सभी बातों को यूज किया, ये अभी ये पुरानी हो गई है, कुछ इसमें रस नहीं है। सतयुग में ये सारे पांच तत्व सत्व प्रधान थे, बहुत सर्व रसों का भंडार इस दुनिया में हमने अनुभव होता था, लेकिन अभी यूज करते 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 ये अभी पुराने हो गए हैं। इतनी सारी आत्माएं इतने वर्षों से इसको यूज करते ही जा रहे हैं, और बाबा कहते कोई अच्छी चीज, हमें कोई भी अच्छी चीज अपने पास नहीं रखनी है जहां बुद्धि हमारी बार बार जाए। कोई भी अच्छी चीज न हो हमारे पास, कोई भी अच्छी व्यक्ति भी न हो हमारे पास, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे अच्छी व्यक्ति लगती है, दोनों को हमें हटा देना है बुद्धि से। बाबा पर बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करना है। दुनिया में केवल दो ही चीजें हैं, तीसरी चीज नहीं है, व्यक्ति और वैभव। जो प्राप्ति हमें व्यक्ति और वैभव से होती है, वो प्राप्ति अगर हम बाबा से करते हैं तो बुद्धि हमारे यहां से हटकर बाबा ही हमारा संसार बन जाता है, और पूरी एकाग्रता की अनुभूति हमें लगती है। तपस्या माना तपते रहना, तपते रहना, तपते रहना, उस ज्ञान सूर्य की तपत में तपते रहना पूरी एकाग्रता के साथ। बुद्धि हटेगी लेकिन बार बार उसको चेक करो, चेंज करो, चेक करो, चेंज करो, उसकी चंचलता को समाप्त कर दो, उस पर पूरी अथॉरिटी अपनी जमाओ, उस पर पूरी ग्रिप अपनी जमाओ। ये दो बच्चे हैं आत्मा रूपी मां के, ये बड़े चंचल बच्चे बन गए हैं, अच्छे थे पहले लेकिन द्वापर युग से लेकर इन्होंने सारा सत्यानाश कर दिया माया के संग में आकर। जो भी खजाने थे सारे गंवा दिए और महात्मा को कंगाल बना दिया, मोहताज बना दिया। संग का रंग लग गया उसको। अभी इन दोनों शैतान बच्चों को हमें माया से हटाकर भगवान के पीछे जुटाना है, उनके शैतानी को हटाकर बहुत अच्छे उसमें गुण धारण करने हैं और बाबा के संग में उनको रखना है। संगम माना बाबा के संग में हर पल बिताना। तो बाबा के संग में रहेंगे ये दोनों शक्तियां, दोनों बच्चे, तो उनका रंग लगता जाएगा और धीरे धीरे वो जो खजानों का सागर है बाबा, उस खजानों से खजाने प्राप्त करके आत्मा को वो माला माल बनाते जाएंगे। बाबा ने एक हमें बहुत सुंदर फैक्ट्री दी है, हर एक को दी है। उस फैक्ट्री का ओनर है आत्मा, मैनेजर है बुद्धि और उसमें वर्कर है मन। अगर बुद्धि रूपी मैनेजर उस वर्कर को अपने कंट्रोल में रखता है, बाबा से जुटा कर रखता है, तो एक सेकंड में अनेक पद्मों की प्राप्ति उस फैक्ट्री से हमें होती है। इतनी अनाप शनाप कमाई कराने वाली फैक्ट्री हमें बाबा ने दी है, लेकिन उस फैक्ट्री का आउटपुट मैक्सिमम हो उसके लिए बुद्धि और मन, ये दोनों से हमें बहुत अच्छी तरह से काम लेना है, फ्री नहीं छोड़ना है। कहीं जो फैक्ट्री वाले होते हैं ना 24 घंटे फैक्ट्री को चलाते हैं, अपना 3 शिफ्ट चलाते हैं, कमाई 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 कमाई। माल बहुत निकले और माल बहुत मार्केट में सप्लाई करते रहे, कमाई करते रहे। तो पूरी एकाग्रता के साथ चलते फिरते उठते बैठते एक लक्ष्य रखे, एक तात लगी रहे, एक बिल्कुल हमें क्या कहें उसको चिंता लगी रहे कि जास्ती से जास्ती मैं अविनाशी कमाई साथ में आने वाली कमाई को कमाने में ही लगा रहा हूं। इसमें हमें लोभी बनना है। ये जो कमाई मेरे साथ चलने वाली है बस उसी में मुझे लगे रहना है। समझा? कमाई जो शब्द है ना उसमें माई शब्द अंतर्निहित, कमाई माई माई माना माया, या तो होगी कमाई या तो होगी माया, इधर खींचेगी या इधर खींचेगी बुद्धि। तो बार बार हमें अपने बुद्धि पर पहरेदार रखना है और बुद्धि को कहीं इधर उधर विचलित होने नहीं देना है और पूर्ण एकाग्रता के साथ उसमें तल्लीन हो जाना है, लीन हो जाना है और डूब जाना है। तो ज्ञान सूर्य जो है उनसे अथाह शक्तियां आपको मिलती जाएगी और आत्मा एकदम भरपूर होती जाएगी, माला माल होती जाएगी। जहां प्यार वहां बुद्धि की तार जुट जाती है, जोड़नी नहीं पड़ती, जुट जाती है। और प्राप्ति से प्यार होता है, जहां प्यार वहां तार जुट जाता है। दुनिया में अविनाशी प्राप्ति कराने वाला, बेहद की प्राप्ति कराने वाला बाबा के सिवा और कोई है ही नहीं। व्यक्ति से आपको कुछ प्राप्तियां होगी भी तो हद की प्राप्तियां होगी, लेकिन बेहद की प्राप्तियां कराने वाला, अविनाशी प्राप्तियां कराने वाला, सदा काल के लिए चलने वाली प्राप्ति कराने वाला बाबा एक ही संसार में है। और उसमें भी हमारा बेहद का कल्याण चाहने वाला, सदा का कल्याण चाहने वाला एक ही भगवान है। आत्माओं में इतनी दरिया दिल नहीं है, बेहद का दिल आत्माओं का नहीं है। इसलिए बाबा जो हमारा सदा कल्याण चाहने वाला है उसके साथ हमारा अटूट प्यार हो और बुद्धि की तार लगातार, माना तार लगी रहे बुद्धि की, लेकिन हाथ काड़े दिल याड़े, हाथ से काम करे दिल यार के पास है, बाबा के पास है। ये काम तो निमित्त मात्र करना है, अपना रोल बजाना है, ये कुछ जिम्मेदारियां है वो निभानी है, रोटी के लिए थोड़ा सा, दो रोटी के लिए कमाना है, बाकी ये हमारा पहला प्रेफरेंस इसको नहीं है, पहला प्रेफरेंस उसको है, सेकेंडरी है। लेकिन जब हम पहला प्रेफरेंस इन बातों को देखते हैं तो फिर बाबा से बुद्धि थोड़ी हट जाती है। तो इसलिए बुद्धि को एक पल भी इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है। ज्वालामुखी योग अर्थात पूरी एकाग्रता उस योगाभ्यास में हो, 1% भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, 1 पल के लिए भी और 1% भी डिस्ट्रैक्शन ना हो। ऐसी एकाग्रता अगर हमारी होगी तो सभी प्रकार की सिद्धियां आपके पीछे पीछे भागेगी। इसलिए इनकम, मुझे इनकम इनकम प्राप्त करते रहना है, कमाई कमाई कमाई, बस बाबा से इशारे मिल रहे हैं, दुनिया से इशारे मिल रहे हैं, परिस्थितियों से इशारे हमें मिल रहे हैं, चारों तरफ माहौल बिगड़ता जा रहा है, इसलिए अनिश्चितता भी बढ़ती जा रही है। इसलिए हमें थोड़ा सा अपने पर अटेंशन देकर स्वयं को मालामाल करने के लिए ऐसी विधि को अपनाना बहुत जरूरी है। कोई किसी का संसार में नहीं है, हमारा अपना कल्याण हमें ही करना है। इसलिए खुद पर पूरा विश्वास रखकर हमें कमाई के पीछे डटे रहना है, लगे रहना है। पांचवी बात, सारा दिन भर में अगर आपको बहुत अच्छी तरह से एकाग्रता की अनुभूति करना है तो मन और बुद्धि को ईश्वरीय नशे के प्रभाव में सदा रखना है। ईश्वरीय नशे का कवच हमें निरंतर पहनकर रखना है, क्योंकि हम युद्ध के मैदान में हैं, दुश्मन के राज में हैं, दुश्मन कभी भी हमारे पर वार करेगा, इसके लिए कवच हमें नशे का, ईश्वरीय नशे का पहनकर जरूर रखना है। पुराने जमाने में जब वो युद्ध होते थे द्वापर में, द्वापर के अंत में, तो तलवार से और भाले से होते थे, तो हमेशा युद्ध के मैदान में जो लोहे का जो कवच है, इस ड्रेस के अंदर लोहे का कवच पहनकर ही योद्धे जाते थे, ताकि दुश्मन अगर वार भी करे तो भी हम सेफ रहें। तो युद्ध के मैदान में अगर हमें जाना है, कर्म क्षेत्र पर हमें जाना है, तो ईश्वरीय नशे का कवच पहनना कभी न भूलें। ये दुश्मन से हमें अलर्ट रहना है। आत्मा पर ईश्वरीय नशा छाया रहे, उसके लिए बाबा कहते सोमान, सदा सोमान के सिंहासन पर बैठे रहो। जो अच्छा सिंहासन होता है ना, कोई छोड़ना नहीं चाहता है। कोई मिनिस्टर की सीट आपको मिल जाती है ना, तो आप छोड़ेंगे नहीं कभी भी। कितना भी लोग अपोजिशन करेंगे ना, पूरा 200 नाखून का जोर लगाकर प्रयास करेंगे कि मेरी सीट बची रहे, मुझे यहां से कोई हटाए नहीं। तो भगवान ने हमें यह सिंहासन दिया है सोमान का, ये बहुत भारी कमाई कराने वाला सिंहासन है। कितनी भी माया अपोजिशन करे, मुझे सोमान पर जो बैठने की पोजिशन है उसको नहीं छोड़ना है। वो तो कोई एमपी एमएलए की सीट कितनी मेहनत करने से 5 साल के लिए मिल जाती है, ये तो हमने द्वापर युग से मेहनत की और अभी मिल गई है भगवान से, तो ऐसे ही हमें नहीं छोड़ना है। सारे कलप के लिए जो माला माल कराने वाली सीट है ये सोमान का सिंहासन, इस पर हमें डटे रहना है, बैठे रहना है, मस्ती से आनंद लेना है उस सीट पर बैठने का। बहुत कंफर्टेबल सीट होती है, बहुत आरामदायक सीट होती है, बहुत प्राप्ति कराने वाली सीट होती है, तो उसको हम छोड़ते नहीं है। इसलिए सदा सोमान की सीट पर सेट रहें, तो कभी भी अपसेट हम नहीं हो सकते हैं। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति हमें अपसेट नहीं कर सकता है। अपसेट तभी होते हैं जब ये सीट को छोड़ते हैं। तो इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से सोमानधारी होकर रहना है, पूरी एकाग्रता से सोमान के सिंहासन पर बैठे रहना है और संगम का आनंद लेना है, प्राप्तियां करते रहना है। दूसरों को सम्मान देते रहें, लेकिन खुद को पहले सम्मान देकर फिर दूसरों को सम्मान दें। हम उल्टा करते हैं, कोई अच्छा व्यक्ति देखते हैं, हमारे से कोई अच्छा किसी बात में उपलब्धि में देखते हैं, तो उसको बहुत सम्मान देते हैं और खुद को बहुत छोटा समझते हैं। उसके कारण फिर जो हीन भावना या इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स मन में आता है ना, वो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता है। इसलिए सबसे पहले इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स को हटाना बहुत जरूरी है। हम किसी से कम नहीं है क्योंकि हमारे दिल में गम नहीं है। हर एक आत्मा का पार्ट अपना अपना है और बहुत गजब का रोल हर एक का है। आपका रोल कोई भी आपके जैसा अच्छा इस संसार में बजा नहीं सकता है, इसलिए आप अपने बहुत बढ़िया रोल को बजाना है आपको, और वो बजा तब सकेंगे जब आप अपनी मस्ती में रहेंगे, सोमान के सिंहासन पर रहेंगे, तब आपका रोल जो है ना बहुत अच्छी तरह से आप बजाएंगे। कभी भी अपने रोल की कंपैरिजन किसी के रोल के साथ नहीं करना है। क्योंकि समान रोल किसी का है ही नहीं। इसलिए अपने में मस्ती में रहे, अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, ये जो फ्रेज है, ये युक्ति है, उक्ति अपने जीवन में प्रैक्टिकल हो। दूसरी बात है, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हमें एक बात ध्यान रखना है कि वैज्ञानिक, जो मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने स्पष्ट किया है कि 70% इन्फॉर्मेशन नेत्र मार्ग से आत्मा में भर जाती है। 70% इन्फॉर्मेशन आंखों के मार्ग से, नेत्र मार्ग से आत्मा में भरती है। और जब हम एकांत में बैठते हैं तो जो भरा हुआ 70% जो है वही रिपीट होता रहता है, वही रिप्ले होता है, वही संकल्प चलते रहते हैं। उसके कारण एकाग्रता हमें मुश्किल लगती है। तो हमें क्या करना है, देखते हुए न देखने का अभ्यास करना है। योगी संसार में रहते हुए भी अपनी दुनिया में विचरण करते रहते हैं। अगर संसार की बातें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे में संसार है। इसलिए साइट सीन देखने में हमारी दिलचस्पी न रहे। दुनियावी समाचार, ये बात है, पता ही है ना, बाबा ने तो पहले ही बताया है, तो ये सारा समाचार तो नई बात तो है नहीं। और देखने में, कोई भी बात देखने में रुचि न हो, ये चीज अच्छी है, ये बात अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है, कोई अच्छा नहीं है, बाबा से बढ़कर और कोई चीज अच्छी है नहीं। कहते हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं, तो बाबा सबसे बढ़िया है, बाबा सबसे बढ़कर हैं, तो बाबा से बढ़कर कोई चीज है ही नहीं, तो फिर क्या, बस बाबा के देखने में सब देखा आ जाता है। इसलिए अपने मस्ती में सदा रहे। एकाग्रता अर्थात एक आग्रहता, मन बुद्धि जो द्वापर युग से हमारी इधर उधर भटक रही है, भटकने का अभ्यास कर रही है, इन दोनों शक्तियों को एक ऑब्जेक्ट पर आग्रह से लगाना और उसी पर स्थित रखना, इसको कहते हैं एक आग्रहता। तो इसलिए बस बाबा ही, बाबा हमारे दिल की दुनिया में हो, कुमारों का जो लाइफ है, बस बाबा ही बाबा हमारे दिल की दुनिया में हो। बाबा ही मेरा संसार है। जो कुमार ऐसा अनुभव करते हैं, उन्हों को दुनिया की कोई भी शक्ति विचलित नहीं कर सकती है। एकदम वो अंगद के समान अडोल और अटल रहते हैं। लेकिन बाबा को संसार बनाने के लिए आवश्यकता है अंगद, अर्थात अंग को भुला दो, देह के भान को भुला दो। देह के भान से आप न्यारे हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक बाबा से प्यारे होते जाएंगे, बाबा की कंपनी में रहेंगे। समझा? इसलिए समय की पुकार है अभी। बाबा के दीवाने बन जाएं, अपने दिल रूपी मंदिर में बाबा को बसा दें, बाबा को अपने मन रूपी मंदिर में, दिल रूपी मंदिर में बस बसा दें और सच्ची योगीन बनकर बाबा के ही मस्ती में सदा रहें। ठीक है, तो बात है अभ्यास की। जितना हम सवेरे शाम अभ्यास करते जाएंगे तो धीरे धीरे मन बुद्धि हमारे एक कंट्रोल में रहेगी। जैसा हम ऑर्डर देंगे, आत्मा कमांडर बनके जैसा ऑर्डर देंगे, मन बुद्धि उसको फॉलो करते रहेंगे। पूरा नियंत्रण और अनुशासन आपका ही इन दोनों शक्तियों पर चलता रहेगा और वो दोनों शक्तियां पूरी आपकी मददगार बनकर चलेगी। मन मेरा दोस्त है, उससे दोस्ती करो। जितना दोस्ती करेंगे ना, उतना मन आपका सहयोगी बनता जाएगा, उतना मदद करने के लिए दौड़ेगा। समझा? इसलिए बाबा यही चाहते हैं, जो हमें पिछले वर्ष होमवर्क बाबा ने दिया, तीव्र पुरुषार्थी बनो, योग का ज्वाला स्वरूप अनुभव करो और विशेष फरिश्ता स्थिति की अनुभूति को बढ़ाओ, ये बाबा के जो इशारे हमें मिले हैं, उन्हीं इशारों पर हमें अच्छी तरह से चलना है और बाबा की आशाओं को पूरा करना है। समझा? तो इसलिए अभी राजू भाई आएंगे, 12:30 तक क्लास कराएंगे और उसके बाद जो है आपके 5-10 मिनट हरीश भाई और हेमंत भाई मिलेंगे, युवा प्रभाग के बारे में कुछ एक बातें आपको बताएंगे। और कल जो है 2-5 ट्रेनिंग सेक्शन में 1 नंबर में शायद युवाओं के संबंध में ट्रेनिंग भी होगा, वो अनाउंस करेंगे। कल दिन में 2-5 ट्रेनिंग सेक्शन 1 रूम में ट्रेनिंग होगा, वो आपको कल बताएंगे। और राजू भाई के क्लास के बाद 10-1 मिनट हरीश भाई आपसे मिलेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा पावरफुल योगा अभ्यास करेंगे ज्वाला स्वरूप स्थिति का। सभी थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे, थोड़ी सुस्ती कहीं कहीं दिखाई देती है, एकदम चुस्त और मस्त होकर पूरी एकाग्रता के साथ हम ज्ञान सूर्य को देखते रहेंगे। मैं आत्मा सूरज मुखी हूँ और बाबा ज्ञान सूर्य हैं और उनके तपत में हम तपते रहें, तल्लीन हो जाएं और उनके सागर में खो जाएं। तो कुछ एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए ऐसा सभी हम अभ्यास करेंगे। मैं हूँ ज्योति बिंदु सितारा, देह से न्यारा, केवल एक ज्योति बिंदु सितारा, मुझ दिव्य सितारों के चारों ओर सुंदर आभा मंडल, यह प्रकाश का औरा अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा बुद्धि बल से उड़कर वाया सूक्ष्म वतन परम धाम की ओर जा रही हूं और मैं आत्मा ज्ञान सूर्य के सानिध्य में बैठकर पूरी एकाग्रता के साथ तपस्या में तप रही हूं। अथाह शक्तियां मुझ आत्मा में ज्ञान सूर्य बाप से भर रही है। मैं आत्मा शक्तियों से संपन्न हो रही हूं।